नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, जो दबा हुआ हो गुनाहों में, तुझसे नजात का जाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही। मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथ में, मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथ में, वो लहू बहा मेरे वास्ते, वो लहू बहा मेरे वास्ते, हर बूंद मेरा ही नाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा। तेरी राह देखूं मैं हर घड़ी, मेरी रूह तरसे तेरे लिए, तेरी राह देखूं मैं हर घड़ी, मेरी रूह तरसे तेरे, मेरे आंसुओं में तेरी छवि, मेरे आंसुओं में तेरी छवि, गिरने न दे इन्हें थाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही। तूने की अता है मुसर्रते, तू ही चश्मा बुदी हयात का। तूने की अता है मुसर्रते, तू ही चश्मा बुदी हयात का। मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं, मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं, हर सांस तेरा ही नाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही। सुबह शाम दूं मैं सदा यही। तू ही है जो गिर तो को थाम ले, जो दबा हुआ हो गुनाहों में, जो दबा हुआ हो गुनाहों में, तुझसे नजात का जाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं, और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने और अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने समय की कमी के कारण प्रभु यीशु मसीह के उन बातों को अधूरा छोड़ दिया था। हमने जीवन की रोटी अर्थात यीशु मसीह द्वारा आत्मिक जीवन के विकास का अध्ययन किया था, और आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और इन सारे अद्भुत बातों को देखें जो आज तक किसी धर्म गुरु ने नहीं कही है, तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आज आपने फिर से एक बार हमारे जीवन में दिया है और हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से एक बार कर सकें। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमें प्रतिदिन नई नई बातों को सिखाते हैं। आज के इस दिन के लिए भी हमारी प्रार्थना है, जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, उस पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, पिताजी आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, हमें एकाग्रतापन दें, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमारे कानों से होकर हृदयों तक पहुंचने पाए, और इतना ही नहीं हमारे जीवन में ये कार्यरत होने पाए, ताकि हम इसके अनुसार चल सकें। हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो किसी न किसी रूप से दुखी और निराश हैं, चिंता व परेशानियों में हैं। पिताजी आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए, अपनी शांति दीजिए, और आज के इस जीवित वचन के द्वारा उनसे बातचीत कीजिए, ताकि वे इस बात को समझ सकें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके हर एक आवश्यकताओं को समझते हैं और आप उसे पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके माता पिता, भाई बहन, उनके प्रियजन उनसे नफरत करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन आप उनसे प्यार करते हैं, आप उन्हें चाहते हैं क्योंकि आपने उन्हें बनाया है, आप चाहते हैं कि वे नाश ना हो परंतु बचाए जाएं। हाँ हमारे प्रभु, आज की इस घड़ी हम सब से आप बातचीत करें, हम सब से आप प्रेम करें, ताकि आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को पा सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 54 से 58 पद तक को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। मित्रों इसे यथार्थ में ना समझें, क्योंकि यीशु अभी उनके सामने जीवित खड़ा है। वह अपने शिष्यों को अंतिम भोज, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, उसके लिए तैयार कर रहा था। उसका कहने का अर्थ था कि वह अपने जीवन को बलि चढ़ाएगा। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि देह का जीवन लोहू में है। देह को खाने का और लोहू को पीने का अर्थ है घनिष्ठ संबंध। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और जान दे दी ताकि हम जीवन पाएं। मेरे मित्रों यह प्रभु भोज का आधार है। यह असहमति का जो विषय है वह है यह मेरी देह है। यीशु ने शिष्यों को रोटी दी और कहा यह मेरी देह है। इसके भिन्न भिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। कैथलिक कलीसिया का विश्वास है कि इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही रोटी मसीह की देह में बदल जाती है। मेरे विचार में हमारे प्रभु की शिक्षा में नरभक्षण नहीं है, अतः यह विचार उचित नहीं। लूथरन कलीसिया का मानना है कि रोटी के माध्यम से आप यीशु की देह को खाते हैं, परंतु यह भी यीशु के कहने का अर्थ नहीं था। जुंगली स्विट्जरलैंड का धर्म सुधारक हुआ है जिसने यीशु के इन वचनों का अर्थ यह समझाया कि वे मात्र संस्कारिक हैं। रोटी और दाखरस यीशु की देह और उसके लहू के प्रतीक हैं। अधिकांश प्रोटेस्टेंट यही मानते हैं। मेरे विचार में यह भी यीशु के कहने के अनुसार नहीं है। जॉन केल्विन ने है पर बल दिया, यह मेरी देह है। आरंभिक कलीसिया और सुधारवादी कलीसिया इसी पर बल देते हैं। रोटी रोटी ही रहती है, वह बदल नहीं सकती। दाखरस भी बदल नहीं सकता, परंतु यह संस्कार मात्र से गहरा अर्थ रखता है। मेरे एक प्राध्यापक थे जिनका कहना था, रोटी आपके मुंह में और मसीह आपके मन में होते हैं। मेरे मित्रों प्रभु भोज लेने से आपको आशीष मिलती है। प्रभु भोज के पालन के कारण मसीह आपकी आत्मिक सेवा करता है। यह अर्थपूर्ण विचार है और इसमें आत्मिक आशीषें हैं। मित्रों मसीह के कहने का अर्थ यही था, मन्ना समय के साथ समाप्त हो गया, परंतु यीशु अनंत जीवन देता है। यूहन्ना आरंभ में कहता है, जिसे हम 1 अध्याय उसके 4 पद में पाते हैं, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 59 से 63 पद में लिखा है, ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवर है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। मेरे मित्रों, यीशु के इस कथन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई और मतभेद भी उत्पन्न हुआ। यीशु ने उनसे कहा कि वह तो स्वर्ग में चला जाएगा, आत्मा जीवन देती है, देह से कोई लाभ नहीं। इससे स्पष्ट है कि प्रभु भोज में यीशु की देह नहीं है। प्रभु भोज का मीठा दाखरस मुझे स्मरण कराता है कि यीशु ने मेरा कड़वा कटोरा पी लिया और मेरे लिए यह मीठा कटोरा रख छोड़ा है। इससे मुझे स्मरण होता है कि यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया और उसमें मेरे लिए आत्मिक आशीषें हैं। मेरे मित्रों, मैं अपनी सेवा के समय प्रभु में सदा ही वचन पढ़ा है, क्योंकि मैंने यह देखा है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों के मन को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के वचन आत्मा है और जीवन है। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 64 और 65 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते थे वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इसके साथ आप यह जोड़ दें, जो आना चाहेगा वह आएगा, यह आपका चुनाव है। हम यूहन्ना 6 उसके 66 पद में पढ़ते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। मित्रों, यह ना भूलें कि जन समूह में अनेक धर्मगुरु भी थे जो यीशु के विरोध में रहते थे। 12 शिष्यों के अतिरिक्त अनेक अनुयायी यीशु के पीछे थे। इस प्रकार यहाँ यीशु के संबंध में 4 विकल्प हैं। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 67 और 68 पद में आगे पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पत्रस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। मित्रों, ध्यान दीजिए, ये पत्रस के अद्भुत वचन थे। आज यीशु हमसे भी यही पूछता है। यदि आप कहें कि यीशु उद्धारकर्ता नहीं है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका गंतव्य क्या है, अर्थात आपका ठिकाना क्या है? आज मनुष्य ज्योति की खोज में कहाँ कहाँ नहीं जाता है। मैं आपसे शमौन पत्रस का प्रश्न पूछता हूँ कि हम किसके पास जाएं? यीशु ही एकमात्र है जिसके पास अनंत जीवन के वचन है। हम यूहन्ना 6 अध्याय उसके 69 से 71 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। मेरे प्रिय मित्रों, यहूदा एक रहस्य है, क्योंकि वह 12 में से एक था जिसे यीशु ने स्वयं चुना था। वह यीशु को पकड़वाएगा। यीशु ने उसे सदैव चुनाव करने की अवसर प्रदान किया। ऐसी दुष्टता को समझना बहुत कठिन है। यीशु उसे दुष्ट आत्मा कहता है। दुष्टता सदा ही रहस्यपूर्ण होती है और इसी कारण वह आकर्षक भी लगती है। यह ऐसा है जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक टेढ़ी लकड़ी है, आप उसका चित्र बनाएं। आप सबके चित्र अलग अलग होंगे। ऐसी ही दुष्टता है, उसके अनेक रूप हैं और यीशु उसे दुष्ट आत्मा कहता है। मेरे प्रियो, इसके विपरीत शमौन पत्रस की गवाह कैसी अद्भुत है। वह कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मेरे प्रिय मित्रों, अब यहाँ पर हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है और हम आगे 7 में यीशु के मंडपों के पर्व या झोपड़ियों के पर्व के समय मंदिर में शिक्षा देने के विषय में देखेंगे। हम यूहन्ना 7 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। ध्यान दीजिए, इन बातों के बाद, यह यूहन्ना की विशेष अभिव्यक्ति है। क्योंकि वह समय के क्रम में अपना वृत्तांत लिख रहा है। अध्याय 6 की घटना गलील सागर के निकट की घटना है। इससे पूर्व वह यरूशलेम में था, जहां उसने बैतसदा के कुंड पर एक रोगी को सप्त के दिन चंगा किया था। और अध्याय 6 की घटनाएं यीशु के क्रूसीकरण से ठीक एक वर्ष पूर्व अप्रैल माह की है, और अध्याय 7 की घटनाओं का समय 6 माह पश्चात अक्टूबर महीने का है। यही घटनाएं मत्ती रचित सुसमाचार 15-18 अध्याय में और मार्कुस रचित सुसमाचार 7-9 अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में व्यक्त है। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष में यीशु गलील में ही रहा, क्योंकि यहूदिया के यहूदी धर्मगुरु उसे घात करना चाहते थे, अर्थात उसे मार डालना चाहते थे। वे यीशु का समय पूरा होने तक उसे छू भी नहीं सकते थे। यह यीशु के जीवन के अंतिम 6 माह है, और इस समय की पहली घटना थी झोपड़ियों का पर्व। पद 1 से प्रतीत होता है कि यीशु के चारों ओर आंधी चढ़ रही है, जो 6 माह पश्चात अपने पूरे वेग के साथ आएगी और उसका क्रूशीकरण किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह आंधी आज भी चल रही है। उसके बारे में आज मतभेद बहुत सारे हैं, अनेक हैं। यद्यपि उसके विरुद्ध आंधी का प्रस्ताव या प्रभाव आरंभ हो गया था, यीशु झोपड़ियों के पर्व के समय यरूशलेम को गया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। इसराइल के 3 पर्व ऐसे थे जिनमें प्रत्येक पुरुष को मंदिर जाना अनिवार्य था। हमारा प्रभु व्यवस्था का पालन करता है, अतः वह मंदिर में गया क्योंकि यह पर्व उन 3 मुख्य पर्वों में से एक था। लेवस्था की पुस्तक 23 अध्याय में इसका उल्लेख हमें मिलता है। यह आनंद का पर्व था क्योंकि इसमें वे मिस्र के दासत्व से मुक्ति का उत्सव मनाते थे। वे अपने घरों से बाहर झोपड़ियां बनाकर उनमें रहते थे। तुरही बजाकर पर्व की उद्घोषणा की जाती थी और 70 बछड़े बलि किए जाते थे। प्रतिदिन मंदिर में पानी उंडेला जाता था और अंतिम दिन 2 गुना पानी उंडेला जाता था। यह जंगल में चट्टान से पानी निकालने के ईश्वरीय प्रावधान का प्रतीक था। मेरे मित्रों, वे शीलो के कुंड से पानी लाते थे। मंदिर का भीतरी भाग मशालों द्वारा सजाया जाता था, जो जंगल में आग के खंभे का प्रतीक था। जंगल में आग और बादल दोनों ही मसीह यीशु का पूर्व चित्रण थे। पुराने नियम के सब पर्व झोपड़ियों के पर्व के अतिरिक्त पुराने नियम के सब पर्व पूरे हो गए थे। झोपड़ियों का पर्व यीशु के फिर पृथ्वी पर आने के समय पूरा होगा। अतः पर्व का समय महान आनंद का समय होता था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 3-5 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने तय जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि वे यीशु के भाई अर्थात यीशु के पुत्र थे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 55 पद में उनके नाम दिए गए हैं, याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा। याकूब और यहूदा ने अंत में यीशु को स्वीकार किया और कलीसिया को पत्र लिखे, जो बाइबल में पाए जाते हैं। परंतु इस समय वे यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उन्होंने उसे परामर्श दिया, जिसे यीशु ने अस्वीकार कर दिया। हम यूहन्ना 7 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। यीशु अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चल रहा था, जो उसका स्वर्गीय पिता था। वह संसार की बुद्धि पर आश्रित नहीं था और न ही वह अपनी बुद्धि को काम में ला रहा था। मेरे मित्रों, उनकी राय में यीशु को वहां चमत्कार दिखाना अच्छा था, जिससे कि जनता अर्थात जनसमूह बहुमत से उसे स्वीकार करे, अर्थात उसे बहुमत प्राप्त हो जाए। परंतु वह अपने पिता के समयानुसार वहां जाएगा। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए वह कार्य करने के लिए आया था जिसे हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। परमेश्वर मुझसे और आपसे सबसे प्रेम करता है और वह व्यवस्था की उन बातों को पूरा करता है ताकि मैं और आप बचाए जाएं। मेरे मित्रों, हमारा आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। हमारी भेंट अगले अध्ययन में फिर से होगी। तब तक आप प्रभु के इस वचन पर अवश्य मनन चिंतन करें कि आप यीशु की देह और उसके लहू द्वारा प्राप्त आत्मिक जीवन को कैसे लेते हैं। आप इस पर विचार करें ताकि आप इसमें विकास करने पाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आपने फिर से एक बार हमसे बातचीत किया है और हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप सचमुच में प्रभु हैं। आप हमारे जीवन में आत्मिक उत्थान करना चाहते हैं। आप हमें उद्धार देना चाहते हैं। आप हमारे जीवन में शांति प्रदान करना चाहते हैं। हमारे प्रभु, हमारे श्रोता भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है। आपने उनके हृदय की हर एक तकलीफों को, जीवन की जरूरतों को भी देखा है। हमारी विनती है कि आप उन्हें बहुत ऐसे आशीषित करें। आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में आप कार्य करें और होने दे प्रभु, आने वाले समय में जब हम फिर से आपके वचन का अध्ययन करते हैं, वे आपकी गवाहियां लोगों को बता सकें कि आप हमारे बदले में मर गए ताकि हम जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, हमेशा का जीवन पाएं जो कभी नाश नहीं होता है। प्रेम पिता परमेश्वर, आज के समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। निरंतर आप हमारे साथ बोलें और बातचीत करें। जब हम अगले दिन फिर से मिलते हैं आपके वचन की संगति में, प्रभु आप हमें अभी से तैयार करें ताकि फिर नई बातों को अपने जीवन में सीख कर उसके अनुसार से हम चलने वाले बन जाएं। हमारे हर एक कमजोरियों से आप हमें आज़ादी दें। धन्यवाद देते हैं पिताजी हमारे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज आपकी निकटता में आने का फैसला लिया है। आप उन्हें आशीषित करें, आप उनकी सहायता करें। हम आपको आदर मान सम्मान देते हैं क्योंकि आपने हमारे विनती प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।